परमादरणीय भिक्षु संघ, आदरणीय अनारिकारिकाएं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, हिमालय के इस पावन प्रदेश में धर्म चर्चा करने का अवसर बहुत प्रसन्नता का कारण बनता है। हिमालय का ये पावन प्रदेश कितना उपजाऊ है। इस प्रदेश में ऐसा महापुरुष उपजा जिसने अनगिनत लोगों के दुखों से मुक्त होने का रास्ता स्वयं ढूंढा, लोगों को सिखाया। इस देश की धरती धन्य है जिसने सिद्धार्थ गौतम जैसे बोधिसत्व को जन्म दिया। कितनों का कल्याण हुआ और आगे भी न जाने कितनों का कल्याण होते चले जाएगा। ऐसा महापुरुष जो सारे संसार को दुखियारा देखकर करुणा विगलित हो उठता है, संसार के सारे प्राणी कितने दुखियारे हैं, कितने दुखियारे हैं, ये दुख के बाहर कैसे निकलें? केवल अपनी मुक्ति की खोज में ही नहीं, इस संसार के सारे प्राणी जो इतने दुखियारे हैं, ये कैसे दुख मुक्त हों? दुख है तो जरूर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई रास्ता होगा ही। इसकी खोज करने के लिए वो व्यक्ति सारा राज वैभव त्याग करके, भिक्षु का बाना पहन करके सत्य की खोज में निकल पड़ा है। और आखिर सत्य खोज ही लिया, धर्म खोज लिया। जो धर्म खोज लिया, जो सत्य खोज लिया, वो किसी एक संप्रदाय का नहीं, वो किसी एक देश का नहीं, वो किसी एक जाति का नहीं। ऐसा सार्वजनीन रास्ता कि जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जिस जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कल्याणकारी रास्ता खोज निकाला, क्या सच्चाई का दर्शन किया। सच्चाइयां तो बहुत हैं इस अपरिमित विश्व में, कितनी सच्चाइयां हैं। ये सूरज कैसा है, ये चांद कैसा है, ये पृथ्वी कैसी है, ये कैसे परिक्रमा करते हैं, यह अमुक बात कैसे होती है, क्या होती है। अरे होगा भाई, उसकी खोज करके क्या मिल जाएगा। आज का वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भौतिक सच्चाइयों की खोज करने में लगा है। थोड़े से सांसारिक सुख अधिक मिल जाएंगे, सुविधाएं अधिक मिल जाएंगी, और क्या होगा, हानि भी हो सकती है, होती ही है। इस महापुरुष को ऐसी खोज से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो खोज इस बात की करनी थी कि आखिर सारे संसार के लोग क्यों दुखी, क्या मूल कारण उनके दुख का, और अगर कोई मूल कारण है दुख का तो उसके निवारण का क्या रास्ता है, उसकी खोज करनी थी। और वही खोज की, बाकी सारी बातें गौण। बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो सर्वज्ञ हुए, सब कुछ जान लिया, कुछ अनजाना नहीं रह गया। इस सारे विश्व में कोई बात अनजानी नहीं रह गई। इस अवस्था पर जो पहुंचेगा उसके लिए कुछ अनजाना नहीं रह जाएगा। लेकिन काम की बात तो ये कि भाई दुख है और दुख का कोई मूल कारण है, कारण है तो उस कारण को दूर कर दिया जाए तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। तो कारण के निवारण का क्या उपाय है, वो उपाय मिल गया तो कारण दूर हो गया। जिन कारणों से दुख होता है वो कारण ही दूर हो गए तो दुख अपने आप दूर हो गया। काम की बात तो इतनी ही, मतलब की बात तो इतनी ही, बाकी तो बुद्धि विलास के लिए, बुद्धि किलोल के लिए चाहे जितनी खोज करो इस ब्रह्मांड में क्या मिलने वाला है। ये काम की बात खोज निकाली। ये चार सत्य दुख है, इसे कोई कैसे नकार सकता है। सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख आता ही रहता है, आता ही रहता है। धनी है तो दुखी, निर्धन है तो दुखी, पढ़ा लिखा है तो दुखी, अनपढ़ है तो दुखी, पुरुष है तो दुखी, नारी है तो दुखी। अरे दुख ही दुख, दुख ही दुख, किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, तो सब दुखी। अरे थोड़ी सी देर के लिए कोई इंद्रिय सुख मिल जाता है, बावला हो जाता है, अरे मैं तो बड़ा सुखी, पर कितनी देर के लिए हर सुख दुख में पलट जाता है। ऐसा कोई सुख नहीं जो अनंत काल तक बना रह जाए। हर सुख जो प्राप्त करता है देर सवेर समाप्त हो जाता है, और समाप्त हो जाता है तो दुख में ही पलटता है। तो दुख है, इस पहली सच्चाई को कौन नकारे। दूसरी सच्चाई, दुख का कारण क्या है। जब आदमी उलझा होता है, उसका मन उसका दिमाग बहुत उलझन से भरा होता है, तो बेचारा समझ नहीं पाता कि दुख का कारण क्या है। वो तो ऊपरी ऊपरी कारण देखता है, निर्धन है तो कहता है इसलिए दुखी हूं कि धन नहीं है, धनी है तो इसलिए कहता है इसलिए दुखी हूं कि कोई संतान नहीं है, अथवा कोई यश नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है, अमुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये मेरे दुख का कारण, ये मेरे दुख का कारण, ये मेरे दुख का कारण। तो अपना सारा बल लगाता है, सारे जीवन भर यही करता है कि ये मेरे जो दुख का कारण है ये कैसे दूर हो जाए। दुख से तो सब छुटकारा पाना चाहते हैं, ये बाहर बाहर के कारणों से छुटकारा पाकर कोई व्यक्ति दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। अनचाही बात किसी को अच्छी नहीं लगती, तो अनचाही को कैसे दूर कर दूं और मन चाही कैसे प्राप्त कर लूं। बहुत प्रयत्न करता है, बड़ी मेहनत करता है, एक अनचाही अवस्था को बदलता है मन चाही अवस्था में, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद दूसरी अनचाही अवस्था नहीं खड़ी हो जाएगी। एक को बदला दूसरी खड़ी हो गई, उसे बदला तीसरी खड़ी हो गई। अरे हमेशा के लिए सुख तो नहीं मिला भाई, घूम फिर के फिर दुख आया, घूम फिर के फिर दुख आया। लेकिन जिसका मन उलझा हुआ नहीं है वो गहराई से देखेगा दुख का कारण क्या है। जब गहराई से इस बात को चिंतन करने लगा कि दुख का कारण क्या है, तो बात समझ में आने लगी कि मन में जब विकार उठते हैं तो आदमी व्याकुल हो जाता है। कोई हो, जैसे ही अपने मन में विकार जगाएगा, क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, व्याकुल हो ही जाएगा। ये हो नहीं सकता कि मेरे मन में क्रोध जगाऊं, दुर्भावना जगाऊं और भीतर बड़ी शांति मालूम हो, बड़ा सुख मालूम हो, हो ही नहीं सकता। हिंदू है और क्रोध जगाता है तो व्याकुल हो जाएगा, मुसलमान है क्रोध जगाता है व्याकुल हो जाएगा, बौद्ध है कि ईसाई है कि जैन है, जो है अपने भीतर क्रोध जगाएगा व्याकुल हो जाएगा, नेपाली है कि नेवारी है कि भारतीय है कि अंग्रेज है कि अमेरिकन है, अरे कोई हो, अपने भीतर क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, व्याकुल हो ही जाएगा। और इसके आगे चलते हैं तो भाई ये क्रोध क्यों जगता है, ये द्वेष क्यों जगता है, दुर्भावना क्यों जगती है। मन चाही नहीं हुई ना, अनचाही हो गई। जहां मन चाही नहीं है और अनचाही है वहीं क्रोध जागता है। ओ तो बात समझ में आई कि मन चाही के प्रति इतना राग है, मेरी मन चाही होनी ही चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ति होनी ही चाहिए, मेरी तृष्णा की पूर्ति होनी ही चाहिए, और जब नहीं होती है तो क्रोध आता है, तो द्वेष आता है, तो दुर्भावना आती है, व्याकुल होता है, बड़ा व्याकुल होता है। अरे व्याकुल तो जब अपने मन में राग जगाएगा तभी हो जाएगा। जैसे ही अपने मन में कोई तृष्णा जगाई, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे, मन ने समता खो दी तो व्याकुल हो गया, कहीं शांति नहीं। और जब नहीं हुई मन चाही बात तो क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, अरे तब तो अशांति का ठिकाना नहीं, दुख का ठिकाना नहीं। तो बात समझ में आ गई कि जहां राग होगा वहां अपने आप द्वेष होगा ही, तृष्णा होगी तो तृष्णा पूरी न होने पर दुख होगा ही। और तृष्णा कैसे पूरी हो सकती है भाई, क्योंकि एक तृष्णा पूरी हो जाए तो लगे अब तो हमारा दुख दूर हुआ, पर जैसे ही एक तृष्णा पूरी हुई कि हमने तो भीतर भीतर ऐसा स्वभाव बना लिया, झट दूसरी तृष्णा खड़ी कर लेंगे, वो पूरी हुई तीसरी तृष्णा शुरू कर लेंगे। अरे खत्म ही नहीं होने देते तृष्णा को, तो इसे कुदरत कहो, इसे परमात्मा कहो, इसे अल्लाह मियाँ कहो, अरे ये कब तक तुम्हारी तृष्णा को पूरी करता जाएगा। तो जब नहीं होगी तो फिर व्याकुल हो जाओगे। तो व्याकुलता ही है ना, हर तृष्णा व्याकुलता ही लाएगी, हर तृष्णा व्याकुलता ही लाएगी। बात समझ में आ गई। तीसरी सच्चाई, जहां अंधेरा है तो अवश्य वहां कहीं प्रकाश भी होगा। प्रकाश का अस्तित्व है इसीलिए अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो दुख है तो अवश्य ऐसी अवस्था होगी जो दुख निरोध की अवस्था है, जहां दुख बिल्कुल नहीं, ऐसी अवस्था अवश्य होगी। समझ में आई, दुख है तो दुख का निरोध भी अवश्य ही है। तीसरी सच्चाई समझ में आई। अब चौथी सच्चाई कि अगर कोई दुख निरोध की अवस्था है, ऐसी अवस्था जहां दुख नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ऐसी अवस्था है तो उसका कोई उपाय होगा, कोई रास्ता होगा, कोई मार्ग होगा। तो ये महापुरुष अभी बुद्ध नहीं बना है, बोधिसत्व है। तो बात समझ में आ गई क्या रास्ता होगा, कि मन में विकार होंगे तो दुखी होगा ही। तो समझता है कि जब जब कोई व्यक्ति शरीर से या वाणी से कोई भी ऐसा काम करता है जिससे अन्य लोगों की सुख शांति भंग होती है, अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचती है, तो वो दुष्कर्म होता है। और जब जब ऐसा काम करता है तो अपने मन में विकार जगा के करता है, हत्या करता है तो भीतर क्रोध जगाता है तब हत्या करता है, चोरी करता है तो लोभ जगाता है तब चोरी करता है, व्यभिचार करता है तो वासना जगाता है तब व्यभिचार करता है। शरीर और वाणी का कोई दुष्कर्म करे अपने मन को मैला किए बिना कर नहीं सकता। ओ तो पहला काम तो ये करना चाहिए, रास्ते पर चलना है ना मुक्ति के रास्ते पर, तो शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो। वाणी से झूठ नहीं बोले, झूठ बोल के किसी को ठगना चाहेंगे तो अपने मन को पहले मैला करेंगे तब किसी को ठगना चाहेंगे, तो झूठ नहीं बोलें, कड़वी बात नहीं बोलें, कड़वी बात बोलेंगे तो अपने मन को विकार से भरेंगे तब कड़वी बात बोलेंगे, कड़वी बात नहीं बोलें, चुगली की बात नहीं बोलें, परनिंदा की बात नहीं बोलें, फजूल निकम्मी बात नहीं बोलें। तो इसी को कहा सम्मा वाचा, हमारा वचन हमारी वाणी ये सम्यक हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, तो हमारा भी कल्याण होगा, औरों को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जब शुद्ध नहीं होती है वाणी तो औरों को हानि पहुंचाते हैं, इतना ही नहीं अपने को भी हानि पहुंचाते हैं, विकार जगाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, विकार जगाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्ता, जितने कर्म शरीर के हैं वो भी निर्मल होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सम्य किसी को कहते हैं, अच्छे होने चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है वो अच्छा कर्म नहीं, सम्यक कर्म नहीं। तो हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। तीन बात हुई। फिर देखा कि ये तीन बात से आदमी बच भी जाता है तो एक कठिनाई और होती है, जो आदमी नशा पता करना शुरू कर दे वो खूब समझेगा हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। नशा करने लगा ना तो गुलाम हो गया नशे का, समझते हुए भी ये सारे काम करना शुरू कर देगा। हर शराबी आदमी या और नशा पता करने वाला आदमी जब दुष्कर्म करता है उसे होश ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। तो भाई इनसे बचने के लिए नशे पते से भी बचना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिर हर आदमी की अपनी आजीविका होती है, जीवन यापन का कोई साधन होता है, कोई काम, कोई रोजी, कोई धंधा, कोई पेशा। वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य प्राणियों को हानि न पहुंचे। हम मेहनत मजदूरी करें, व्यापार करें, जो कुछ करें, हमारे घर में धन तो आए पर उस धन से औरों की सुख शांति भंग हो, औरों को हानि हो, औरों को कष्ट हो, तो भाई ये आजीविका अच्छी नहीं, सम्यक हो। आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे अपना भी भला, औरों का भी भला, तो सम्यक आजीविका हुई। तो ये तीनों बात शील सदाचार की बात कि भाई काम शुरू करने के लिए शरीर और वाणी से तो दुष्कर्म करना बंद करें तो आगे की बात होगी। ऐसा कर भी दिया तो फिर देखता है कि धर्म पूरा नहीं हुआ इतने से, क्योंकि आदमी का मन ही वश में नहीं होगा तो खूब समझते हुए भी कभी न कभी शील तोड़ देगा, सदाचार तोड़ देगा, कोई ना कोई बुरा काम कर जाएगा। और नहीं भी करता है शरीर और वाणी से तो मन से तो कर ही जाएगा, अपने मन को तो बिगाड़ता ही जाएगा। तो भाई मन को वश में करना बहुत जरूरी है। तो धर्म का दूसरा पक्ष, एक पक्ष हुआ शील सदाचार का और दूसरा मन को वश में करने का। तो मन को वश में करने के लिए कोई कसरत करनी पड़ती है, कोई व्यायाम करना पड़ता है, कोई मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको कहा सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम। ऐसी मेहनत करे, ऐसा परिश्रम करे, ऐसी कसरत करे जिससे हमारे मन की खोट निकल जाए, नई खोट आए नहीं, हमारे मन के सद्गुण कायम रहें और बढ़ जाएं और जो नहीं सद्गुण है वो आ जाएं। बस यही सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम हो गया। अब सम्यक व्यायाम करते हुए क्या करना होता है? सम्मा सति, सजग रहो, हर अवस्था में सजग रहो। मन में क्या चिंतन चलता है उसके प्रति सजग रहो, वाणी से क्या बोल रहे हैं इसके प्रति सजग रहो, शरीर से क्या कर रहे हैं इसके प्रति सजग रहो। सम्मा सति, और यही सम्मा सति क्षण प्रतिक्षण सजग हैं, सजग हैं, सजग हैं। यूं लंबे अरसे तक सजग हुए कि उसी को कहा समाधि, सम्मा समाधि हो गई। तो मन वश में आने लगा। ये दूसरा धर्म का, धर्म के मार्ग का ये एक दूसरा हिस्सा। पर इतने से भी बात नहीं बनी। खूब समझता है ये व्यक्ति, बुद्ध बनने वाला है ना, तो ऐसी अवस्था पर पहुंच गया कि मन बहुत साफ है, चिंतन करने का सारा तरीका बहुत स्पष्ट है, कहीं उलझन नहीं है। तो देखता है कि हमारा मन वश में हो जाए तो भी अंतर मन की गहराइयों में अगर हमने विकार इकट्ठे कर रखे हैं, गांठे बांध रखी हैं, ऐसे क्लेश जो कि हमारे अंतर मन में सोए सोए चित्तधारा के साथ चलते हैं, जिनको उन्होंने कहा अनुशय क्लेश, सोए सोए हमारी चित्तधारा के साथ चलते हैं, आज की भाषा में कहें तो अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉम्प्लेक्स है वो सारे उसके साथ साथ चलते हैं। अरे जब तक ये कॉम्प्लेक्स हैं, जब तक ये अनुशय क्लेश है, ये विकार अंतर मन की गहराइयों में है, तब तक न जाने कब उनमें से कोई विकार सिर पे चढ़ेगा और मन को वश में की हुई सारी बात एक और रह जाएगी, फिर कोई दुष्कर्म कर जाएंगे, फिर मन को मैला कर लेंगे। इनको जड़ों से निकालना है। तो ये तीसरा हिस्सा, इसे प्रज्ञा कहा, सम्मा संकल्प। अब जो संकल्प है, चिंतन है, वो भी सम्यक हो, गलत नहीं हो, उसमें कोई विकार वाले बात नहीं आए मन में और उतने से ही बात नहीं बनती। सम्मादिट्ठि सम्यक दर्शन, जो जो हो रहा है उसके स्वभाव को उसके गुण को अपनी अनुभूति से जाने। सम्मादिट्ठि रास्ते पकड़ में आ गया। ये आठ अंग वाला मार्ग, ये इस पर कोई आदमी चले तो अपने विकारों से छुटकारा पालेगा, तृष्णा से छुटकारा पालेगा, राग से छुटकारा पालेगा, और राग से तृष्णा से छुटकारा पालेगा तो सारे विकारों से पालेगा। सारे विकारों की जड़ यही है कि तृष्णा होती है, ये चाहिए ये चाहिए, और नहीं पूरी होती तो फिर और दुनिया भर के विकार पैदा करता है, सब निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये चारों सच्चाइयां समझ में आ गई तो बोधिसत्व बुद्ध नहीं बना। चार सत्यों को समझ करके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। ये चार सत्य तो सभी समझते हैं ना, अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग तो सभी समझते हैं ना। जिसको पूछो क्या चार आर्य सत्य, तो कहेगा दुख है, दुख का उपाय है, दुख का निरोध है, निरोध का रास्ता है, बोल देगा बड़ी जल्दी जल्दी, और समझ भी लेगा, खूब भाषण भी दे देगा। अरे नहीं बुद्ध बनाना तो बोधिसत्व भी नहीं बुद्ध बना, तो और चिंतन करता है। एक चक्कर और उसका, इन चारों का एक चक्कर और, दुख है। पूरी तरह समझना चाहिए भाई क्या दुख है, किसको दुख कहें, तो दुख है इसका परिज्ञान होना चाहिए। क्या परिज्ञान होता है? साधारण ज्ञान तो बुद्धि का होता है, बुद्धि से समझ लिया अनचाही बात है इसलिए दुख है, मन में विकार जागा इसलिए दुख है। नहीं नहीं उससे नहीं बात बनी। दुख का जितना क्षेत्र है, जहां तक दुख है दुख है दुख है, सारा देख जाए, उसका परिज्ञान हो गया, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह गया दुख का, वो सारा देख जाना चाहिए, तो परिज्ञान हुआ, परिपूर्ण ज्ञान हुआ दुख का। तो दुख का परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये बात समझ में आई। दुख का कारण तृष्णा है राग है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन भाई अगर ये उखड़ी नहीं तो बात बनी नहीं ना। तृष्णा है पर उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, ये दूसरी बात समझ में आई। तृष्णा को जड़ से उखाड़ना चाहिए। दुख निरोध है, दुख निरोध की एक अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है, इंद्रियातीत अवस्था है, भवातीत अवस्था है, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। केवल हम अपनी श्रद्धा से स्वीकार कर लें कि भाई कोई एक निर्वाण की अवस्था है, वहां कोई दुख नहीं होता, तो हमें क्या मिला? जिसने कभी रसगुल्ला चखा नहीं उसे कहें रसगुल्ला बहुत मीठा है, और वो भी सिरिलाए बहुत मीठा है रसगुल्ला बहुत मीठा, अरे तूने तो चखा ही नहीं ना, तुझे कैसे मालूम बहुत मीठा। तो निर्वाण ऐसी अवस्था है जहां दुख ही नहीं है, तुझे क्या मालूम, तूने तो नहीं साक्षात्कार किया ना। साक्षात्कार करना, इस तीसरे आर्य सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। चौथा, बात समझ में आ गई, ऐसा रास्ता है शील का, समाधि का, प्रज्ञा का, ये धर्म के आठ अंग हैं, इन पर चलना चाहिए। खाली समझ में आ गया उससे बात नहीं पड़ती, इस पर चलना चाहिए। तो दूसरी बार ये चार आर्य सत्य का एक चक्कर पूरा हुआ, तब भी बुद्ध नहीं बना, अभी बोधिसत्व ही है, तब क्या किया? दुख है इसका परिज्ञान होना चाहिए, तो अब काम में लग गया और कहता अब मैंने दुख का परिज्ञान कर लिया, कर लिया, मुझको पूरी जानकारी हो गई दुख की, दुख का कोई क्षेत्र मुझसे अनजाना नहीं रह गया, सारा जान गया, दुख का परिज्ञान कर लिया, ये दुख का कारण है, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। तो तीसरे राउंड में इसको जड़ से उखाड़ लिया, ये दुख निरोध की अवस्था है, इसका साक्षात्कार करना चाहिए। दूसरा राउंड, अब तीसरे राउंड में इसका साक्षात्कार कर लिया, इसके साक्षात्कार के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो तीसरे राउंड में इस रास्ते पर मैं चल चुका। ती परिवर्तन द्वादशाकारं, इन चारों आर्य सत्यों को तीन प्रकार से, तीन राउंड में 12 प्रकार से जो उसमें से गुजर गया वो बुद्ध होगा, नहीं तो बुद्ध नहीं होगा। और यही सिखाया, सारे जीवन भर लोगों को यही सिखाया। क्या विशेषता है बुद्ध की, मैं अपनी बात कहूँ, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, ये सारी बातें, राग नहीं जगाना चाहिए, द्वेष नहीं जगाना चाहिए, वीत राग बनो, वीत भय बनो, वीत द्वेष बनो, वीत क्रोध बनो, ये सारी बातें तू बचपन से सुनते आ रहे थे। स्थित प्रज्ञ हो जाओ, प्रज्ञा में ऐसे स्थित हो जाओ कि तुमसे कोई दुष्कर्म हो ही नहीं, ये सारी बात सुनते आ रहे थे, कोई नई बात तो नहीं थी। लेकिन ये सारी बात सुनते तो आ रहे थे और समझते भी आ रहे थे, पर ऐसा होता तो नहीं था। बर्मा में रहते हुए वहाँ की अनेक संस्थाओं में न जाने कितनी बार वेदांत पर न जाने कितने प्रवचन दिए और ये सारी मान्यताओं पर कितने प्रवचन दिए, और घर लौट करके जब अपने आप पर चिंतन करके देखता, अरे प्रवचन तो देकर आया कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, राग मत पैदा करो, द्वेष मत पैदा करो, पर मैं तो राग पैदा करता हूँ ना, मैं उपदेश देकर आया पर मैं तो राग पैदा करता हूँ ना, मैं तो द्वेष पैदा करता हूँ ना, मैं तो स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ ना, मैं तो अनासक्त नहीं हुआ ना, उतना ही दुखिया रहा, इतना अहंकार है मेरे भीतर, इतना क्रोध है मेरे भीतर, इतनी वासना है मेरे भीतर, कुछ भी तो नहीं निकली ना, तो ये प्रवचन क्या काम आए, ये उपदेश क्या काम आए। किसी कारण से भगवान के बताए हुए इस मार्ग में से गुजरा, मार्ग में से गुजरा तो बुद्धि विलास करने को नहीं कहते मार्ग में से गुजरा। बुद्धि विलास तो कहीं बैठ करके दो चार बातें कर लेते, किसी बौद्ध पंडित से, किसी भिक्षु से समझ लेते भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया, अच्छा ऐसा सिखाया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाया, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निवारण होना चाहिए, और निवारण के लिए वो कितना अच्छा रास्ता बता दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना करके रह जाते, मिलता क्या? चलना सिखाया हमारे गुरु ने, चलना सिखाया, शील का पालन ऐसे करना होगा, मन को वश में ऐसा करना होगा, मन को विकारों से मुक्त इस प्रकार करना होगा, ऐसे प्रज्ञा जगानी होगी, और ये भावनामयी प्रज्ञा जगाते 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 ऐसे विकारों को दूर करना होगा, करने लगे, विकार दूर होने लगे, तो मन इतना प्रसन्न हुआ, अरे भाई कोरे उपदेश की बात नहीं, कोई व्यक्ति बुद्ध होता है कोरा उपदेश नहीं देता, ऐसे उपदेश देने वाले तो बुद्ध के पहले भी बहुत हुए, बहुत होते हैं, क्योंकि न जाने कितने बुद्ध हुए, इस गौतम सिद्धार्थ गौतम के पहले भी न जाने कितने बुद्ध हुए, तो उनकी वाणी छनती 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 अनेक संप्रदायों में, अनेक मान्यताओं में, धर्म की बात तो रहती ही है पर बात ही रहती है, उसका पालन कैसे करें, धर्म को धारण कैसे करें। बुद्ध होगा तो स्वयं धर्म को धारण करके ही बुद्ध होगा, और लोगों को सिखाएगा तो धर्म कैसे धारण करें ये सिखाएगा, और ये सिखाएगा तो ही समझो बुद्ध है, नहीं तो समझो कोरा बुद्धिवादी ज्ञानी है, बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझ गया है, अभी बुद्ध नहीं हुआ। बुद्ध होगा तो करना सिखाएगा लोगों को, सारे जीवन भर यही किया, सारे जीवन भर यही किया। किस तरह से शीलवान बन सकते हो, कैसे दुष्कर्मों से बच सकते हो, कैसे मन को वश में कर सकते हो, और कैसे अपने मन के विकारों को जड़ों से निकाल सकते हो, और यूं निकालते निकालते ये सारे इंद्रिय जगत की सच्चाइयों का साक्षात्कार करते करते इस इन इंद्रियों के परे की जो अवस्था है, जो इंद्रियातीत अवस्था है, जो भवातीत अवस्था है, उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ये रास्ता बताते हैं, और इस रास्ते पर लोगों को चलाते हैं तो बुद्ध होते हैं। अन्यथा तो केवल प्रवचन देने वाला, केवल उपदेश देने वाला कोई ज्ञानी होगा, बुद्ध केवल उपदेश दे के नहीं रह जाते। तीन प्रकार से परिवर्तन द्वादशा कारण, इस चार इन चारों बातों को तीन प्रकार से, बारह प्रकार से अपनी अनुभूतियों पर उतारो, तब समझोगे कि बोधि का क्या लाभ हुआ, इस रास्ते पर चलने का क्या लाभ हुआ, अन्यथा लाभ नहीं हुआ। इसी को विपश्यना कहते हैं। अपने भीतर सच्चाई को देखना शुरू कर दे, वाणी से शरीर से दुष्कर्म हुआ तो तुरंत जाने देख दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म हुआ तो मन में विकार जागा, और मन में विकार जागा तो मैं दुखी हुआ, यूं अपने दुख का साक्षात्कार करना शुरू करता है, देखना शुरू करता है। ध्यान करते करते बड़ा सुख मालूम होता है, बड़ी शांति मालूम होती है। चित्त एकाग्र हुआ, बड़ा सुख आया, बड़ी शांति आई, सारे शरीर में एक पुलक रोमांच होता है, एक प्रवाह चलता है, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो समझता हमारा दुख दूर हो गया। देखो ध्यान करते करते हमारा सारा दुख दूर हो गया। अब देखो ऐसा प्रवाह चलता है, ऐसा पुलक रोमांच होता है, भीतर ही भीतर बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। लेकिन फिर देखता है थोड़े समय के बाद चला गया वो, अब तो कोई पुलक रोमांच भी नहीं है, कोई आनंद भी नहीं है, तो बड़ा रोता है। अरे हमारा ध्यान इतना अच्छा होता था, ऐसा पुलक रोमांच होता था, ऐसी प्रीति जागती थी, और अब तो कुछ नहीं है। फिर रोता है तो फिर समझ में आती है बात, अरे अभी इंद्रिय जगत का ही क्षेत्र है ये, इंद्रियां काम कर रही हैं, ये नाम और रूप का ही क्षेत्र है, चित्त और शरीर का ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो जो अनुभूति होगी, यं किंच वेदनं वेदयति तं पि दुःखस्मिं दुःख, अरे जो जो तुम्हें अनुभूति होगी इस क्षेत्र में, सारी दुख ही है, दुख ही है। कितना ही सुख क्यों ना मालूम हो, बदल जाएगा दुख में, क्योंकि वो अनित्य है, वो नश्वर है, वो भंगुर है, वो सदा रहने वाला नहीं। ये बात अनुभूति से समझना शुरू कर देगा तो कहीं चिपकेगा नहीं। ये जो इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं, इनके प्रति आसक्ति नहीं पैदा करेगा। अरे ये तो बदलने वाले हैं भाई, ये तो नष्ट होने वाले हैं, ये तो समाप्त होने वाले हैं, इनको क्या अच्छा मानूं। यूं उनके प्रति अनासक्त रहते हुए आगे बढ़ेगा, विकार निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, अनुशय क्लेश भी निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तब एक अवस्था आएगी कि इंद्रियों के परे की अनुभूति होगी, ऐसी अनुभूति जिसमें इंद्रियां काम नहीं करती। सड़ायतन निरोध, सारी सड़ायतन का निरोध हो गया, आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, नाक काम नहीं करते, जीभ काम नहीं करती, त्वचा काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करती। इन छह इंद्रियों के परे की अवस्था आई, तो छह इंद्रियों के परे की अवस्था आई तो अब स्पर्श भी नहीं होगा। ये इंद्रियां जब तक हैं तभी तो स्पर्श होता है, आंख काम करती है तो किसी रूप का स्पर्श होता है, कान काम करता है तो किसी शब्द का स्पर्श होता है, नाक काम करता है तो किसी गंध का स्पर्श होता है, जीभ काम करती है तो किसी रस का स्पर्श होता है, त्वचा काम करती है तो स्पर्शव्य पदार्थ का स्पर्श होता है, मन काम करता है तो कोई चिंतन का स्पर्श होता है। जब ये काम ही नहीं करते, छओं के छओं मृत हो गए, निरोध हो गया इनका, तब स्पर्श ही नहीं होगा। अरे स्पर्श ही नहीं होगा तो वेदना भी नहीं होगी भाई। कान में कोई शब्द आया तो वेदना होगी, सुखद होगी कि दुखद होगी, शब्द अच्छा लगा तो सुखद होगी, शब्द बुरा लगा तो दुखद होगी। आंख पर रूप आया, सुखद लगा तो सुखद संवेदना होगी, बुरा लगा तो दुखद संवेदना होगी। ऐसे ही छह इंद्रियों पर जो विषय ने आके स्पर्श किया, उसको हमने अच्छा मान लिया तो भीतर ही भीतर बड़ी सुखद संवेदना हुई, उसको हमने बुरा मान लिया तो भीतर ही भीतर बड़ी दुखद संवेदना हुई। अरे अब स्पर्श ही नहीं होता तो वेदना भी नहीं होती, न सुखद न दुखद। उस अवस्था में, वो निर्वाण की अवस्था में, इंद्रियातीत अवस्था में, न कोई सुखद है न कोई दुखद है, माने ये लौकिक क्षेत्र का सुख दुख नहीं, कोई संवेदना ही नहीं। तो जब वेदना ही नहीं तो तृष्णा नहीं। अरे ये वेदना है तभी तृष्णा जागती है, सुखद वेदना होती है तो राग की तृष्णा, दुखद वेदना होती है तो द्वेष की तृष्णा। तो उस अवस्था पर पहुंच गया कि जहां तृष्णा नहीं है, जहां कोई वेदना नहीं है, जहां इंद्रियों के परे की अवस्था है, निब्बाणं परमं सुखं, और जितने सुख हैं वो समाप्त हों तो दुख लेकर आएंगे। हर इंद्रिय सुख समाप्त होने पर दुख ही लेकर आएगा, क्योंकि हर इंद्रिय सुख जब आता है तो हम आसक्ति पैदा कर लेते हैं, उससे चिपकाव पैदा कर लेते हैं, और जब चिपकाव पैदा करते हैं तो उसके छूटते ही रोना आता है, हाय रे चला गया ना, इतना सुख आया चला गया ना, तो दुख में परिवर्तित हो गया। निर्वाण का सुख जिसे मिल गया, साक्षात्कार कर लिया और फिर इंद्रिय जगत में आया तो मुस्कुराते हुए आया, दुख नहीं है। निर्वाण का सुख जब चाहे तब उस अवस्था में चला जाएगा, दुख नहीं है। तो निब्बाणं परमं सुखं, उसकी अनुभूति होनी चाहिए ना। केवल उसकी चर्चा कर लें, उसकी बात कर लें, श्रद्धा से उसको स्वीकार कर लें तो बात बनती नहीं। तो उस अवस्था पर पहुंचने के लिए जो काम करना चाहिए, इस महापुरुष ने वो काम करना सिखाया। तो जैसे जैसे इस रास्ते पर चलता गया, मुझे लगा कि अनमोल रतन मिल गया। अरे बातें तो करने वाले बहुत हुआ करते थे, अब तक बहुत बातें सुनी, धर्म की बातें, सारी अच्छी ही बातें, हम क्यों बुरा कहें, बुरा है भी नहीं, सभी जगह अच्छी बातें भरी पड़ी हैं, पर वो अच्छी बातें जीवन में कैसे उतरें, ऐसा उतारने का रास्ता तो किसी के पास नहीं ना, कोरी बातें ही बातें, बातें ही बातें। इस महापुरुष ने रास्ता दिया, और रास्ता भी ऐसा दे दिया कि जिसका कोई संप्रदाय से लेन देन नहीं, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई हिंदू हो, जन्म भर अपने को हिंदू ही कहता रहे, फिर भी इस रास्ते पर चलते 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 दुख से मुक्त हो जाएगा। कोई मुसलमान हो, जीवन भर अपने को मुसलमान ही कहता रहे और इस रास्ते पर चलते चलते दुख से मुक्त हो जाएगा। ईसाई हो, ईसाई कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे, अरे क्या फर्क पड़ता, आदमी आदमी है, बेहोश है, उसे होश नहीं है, दुनियादारी की नजरों में तो होश में है पर भीतर बड़ा बेहोश है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसी अविद्या में है। भीतर से विद्या जाग गई, भीतर से होश जाग गया, भीतर से प्रज्ञा जाग गई, अब अपने विकारों को निकालने लगा, निकालते निकालते विकारों से मुक्त हुआ तो दुखों से मुक्त हो गया। अब देखते हैं पिछले 19 वर्षों से, जब से ब्रह्मदेश छोड़ करके इधर आए और सारे विश्व में गए, तो हर संप्रदाय के लोग आते हैं और हम हर संप्रदाय के नेता आते हैं। अब तक जैनियों के कोई 500-600 साधु मुनि और साध्वियां शिविर में शामिल हो गए, अब तक ईसाइयों के कोई 700-800 पादरी और साध्वियां शिविर में शामिल हो गए, इसी तरह से बौद्धों के, इसी तरह से हिंदुओं के, न जाने कितने सन्यासी आए। ये लीडर लोग आकर के देखते हैं कि बात तो बड़ी ठीक है भाई, विकार निकालना चाहिए इसको तो सब मानते हैं, चित्त को निर्मल करना चाहिए इसको सब मानते हैं, सुख तभी आएगा जब चित्त निर्मल होगा, तो कैसे करें। तो एक तरीका तो ये होता है कि जब विकार जागे मन को किसी और बात में लगा दो, अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लो, किसी और बात में लगा दो, भूल जाएंगे तो लगेगा विकार चला गया, गया नहीं, जड़ों तक विकार कायम है। तो जड़ों तक विकार निकालने के लिए उसका सामना करो, उसका साक्षात्कार करो, उसे देखते जाओ, देखते जाओ, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, उखड़ता चला जाएगा, उखड़ता चला जाएगा। अब तो पश्चिम के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट इस बात को समझने लगे, ये गौतम बुद्ध, ये महापुरुष मन की सच्चाइयों को खोजने के लिए इतनी गहराइयों तक चला गया। हम अपने आप को इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोनालिस्ट कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, अरे हम तो उसके सामने बच्चे हैं, समझ ही नहीं पाए अभी तक। जब शिविरों में आते हैं तो भगवान की ये वाणी समझ में आती है कि कैसे चित्त से रूप बन जाता है, ये अष्टकलाप बन जाते हैं, कैसे माइंड मैटर में परिवर्तित हो जाता है, कैसे माइंड और मैटर एक दूसरे से इतने रिलेटेड हैं, कैसे माइंड और मैटर एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस प्रकार ये दुख चल पड़ता है, व्याकुल होते हैं, व्याकुल होती है, ये सारी बात इस रास्ते से गुजरने पर समझ में आती है। मन में कोई विकार जागता है तो भगवान कहते हैं आश्रव जागा, क्या आश्रव जागता है, एक प्रवाह चलता है भीतर, एक केमिकल प्रवाह चलता है, उसको भगवान ने कहा आश्रव जागा। क्रोध होगा तो ये खून की धमनियों में, खून के साथ साथ एक ऐसा रसायन चलना शुरू कर देगा जो हमको बहुत व्याकुल बना देगा, वो रसायन इसी प्रकार का हमको व्याकुल बना ही देगा, और जितने व्याकुल होंगे क्रोध फिर करेंगे, क्रोध और करेंगे वो रसायन और चलेगा, वो रसायन और चलेगा और क्रोध करेंगे, ऐसे ही वासना करेंगे एक प्रकार का रसायन चलेगा, द्वेष करेंगे एक प्रकार का रसायन चलेगा, भय करेंगे एक प्रकार का रसायन चलेगा, और वो रसायन हमारे दुखों को बढ़ाएगा, हमारे विकारों को बढ़ाएगा। अरे इस महापुरुष ने रास्ता ढूंढ लिया कैसे अनासवो, सारे आश्रव क्षीण कर दें, ये जो केमिकल फ्लो चलता है, बायोकेमिकल फ्लो, इसको कैसे रोक दें। अगर हमने प्रतिक्रिया करनी बंद कर दी मन के स्तर पर, तो शरीर पर होने वाले ये आश्रव अपने आप दूर होने लगे, इनका मन पर जो प्रभाव होता था अपने आप दूर होने लगा, यूं करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएगा अनासवो अनास। अब सारी बात लोगों को समझ में आने लगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो कुछ सिखाया वैज्ञानिक सिखाया, साइंटिफिक सिखाया, अंधविश्वास नहीं, बुद्ध कहता है इसलिए मानना पड़ेगा, कभी नहीं कहा मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, अपने अनुभव से जानो और तब मानो, जो बात अपने अनुभव से नहीं जानी उसे मानकर तुम्हें क्या मिल जाएगा, धोखे में हो जाओगे, जानो, बुद्ध कहता है तो भी उसे जानो। उनके पास लोग आते थे, प्रश्न करते थे, तो भगवान पूछते थे ये मानते हो, हाँ मानता हूँ, ये मानते हो, हाँ मानता हूँ, ये मानते हो, मानता हूँ, अरे अब तक तो मानते ही थे ना, अब इसे जानो, पस्स जान सम्यक दर्शन करो, सम्यक ज्ञान जगाओ, अपनी अनुभूति से इस सच्चाई को जानो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे मान लेने से क्या मिल गया, ये औषधि बहुत अच्छी है इससे रोग दूर हो जाएगा, रोगी ऐसा ही करता रहे, ये औषधि बहुत अच्छी है, इससे रोग दूर हो जाएगा, तो रोग दूर नहीं होता ना। उस औषधि का सेवन करो, सेवन करेगा तो सचमुच रोग दूर हो जाएगा। तो यही सिखाता है कोई बुद्ध होता है तो, धर्म धारण करो, कोई बात करने से नहीं होता, तो धर्म धारण करें, फिर देखेंगे किस प्रकार कल्याण होना शुरू हो गया। कोई हो उसी का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, जो धारण करने लगेगा उसी का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन के विकार निकलेंगे, मन के विकार निकलेंगे तो अपने आप दुखों से मुक्त होता चला जाएगा। बस यही नय है, यही रास्ता है। और इस धर्म की भूमि ने इस नय को संभाले रखने का प्रण लिया है, इसीलिए नय पाल कहलाता है। इस नय का पालन करना है, इसे यहाँ सुरक्षित रखना है। तो भाई कैसे सुरक्षित रखोगे इस नए को, इस रास्ते को? धारण करके ही सुरक्षित रखोगे। गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है, पालन करो और फिर देखो कैसे नए का पालन होने लगा, मार्ग का पालन होने लगा, धर्म का पालन होने लगा, कितना जीवन सुख से भर गया, शांति से भर गया। न अपनी हानि करते हैं, न औरों की हानि करते हैं, बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं, अपना भी भला औरों का भी भला, सुख शांति का जीवन जीने लगे। हिंदू है तो हिंदू, मुसलमान है तो मुसलमान, बौद्ध है तो बौद्ध, जैन है तो जैन, ईसाई है तो ईसाई। ये तो अपने आप कैसे हम सुख का जीवन जिए, अपने भीतर कैसे सुख शांति कायम करें, कैसे औरों के लिए भी सुख शांति बांटें। जैसे ही हम भीतर विकार जगा के दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी कर देते हैं। जब क्रोध जगाया तो खुद भी दुखी हुआ, औरों को भी दुखी किया। जो विकार जगाएगा खुद भी दुखी होगा, औरों को भी दुखी कर लेगा। विकार ही निकल गए तो भीतर सुख शांति आएगी, तो स्वयं भी सुख शांत रहेगा, औरों को भी सुख शांति ही बांटेगा, उसके इर्द गिर्द जो आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। तो भाई ये नए, ये मार्ग चलना है इस पर, ये रास्ता चलना है इस पर, ये धर्म पालन करना है, धारण करना है। धारण करे तो ही धर्म, नहीं तो कोरी बात, कोरी बातों से कुछ नहीं मिलेगा। बात का इतना लाभ जरूर होता है, जैसे धर्म चर्चा करते हैं तो ये लाभ होता है, एक प्रेरणा जागती, एक मार्गदर्शन मिलता है कि भाई अच्छी बात है, अब इस रास्ते पर चलना चाहिए। पर लाभ तभी होगा जब चलेंगे रास्ते, केवल सुन के रह गए और बड़ी श्रद्धा जगाई, बड़ा मन प्रसन्न कर लिया, समझ के रह गए, बड़ी श्रद्धा जगाई, बड़ा मन प्रसन्न कर लिया और चले नहीं, तो लाभ नहीं होगा। तो चलें, आज की धर्म सभा में जो जो आए हैं उन सब में धर्म का बीज है, तभी आए हैं। नहीं तो खेल तमाशा होगा तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं सिनेमा हो, थिएटर हो, नाच गान हो, बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे धर्म की बात सुनने कौन आता है? धर्म की बात सुनने आए हो इसका मतलब पूर्व जन्मों का कोई न कोई अच्छा धर्म का बीज है। लेकिन वो केवल बीज ही रह जाए तो बीज का क्या करेंगे, उसका फल आना चाहिए ना। तो बीज तो है, इसलिए धर्म की सभा में आए। अब इस बीज को बढ़ाएं, विकसित करें, इसे फलित करें, इसमें फल लगें। अरे धर्म के फल बड़े मीठे होते हैं, बड़े कल्याणकारी होते हैं। तो जो जो लोग आज की धर्म सभा में आए हैं वो धर्म का मीठा फल चखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।